SBS हिंदी।
दोस्तों आज हमारे साथ हैं भारतीय फिल्म जगत की एक ऐसी शख्सियत जो एक के बाद एक इस विधा के सभी क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ रही हैं। जी हां, हमारे साथ हैं बेहतरीन अभिनेत्री, निर्देशक और स्क्रीन प्ले राइटर और न जाने क्या क्या नंदिता दास। स्वागत है नंदिता।
शुक्रिया।
जाहिर है हमारे श्रोता नंदिता को फायर, अर्थ, बवंडर, फिराक और ऐसी कई फिल्मों के लिए जानते हैं, लेकिन मेरे साथ ही नंदिता से शायद लोगों को भी शिकायत होगी कि नंदिता इतना कम क्यों दिखती है। क्या स्पेशल नंदिता को स्पेशल सिलेक्शन का इंतजार रहता है?
जी बिल्कुल, मतलब अच्छा काम करना, एक तो एक ही जिंदगी है, उसे ठीक से निभाया जाए। अच्छे काम की हमेशा तलब रहती है, लेकिन सिर्फ बिजी फॉर द सेक ऑफ बीइंग बिजी का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, मैं पर्दे के पीछे और कई चीजें ऐसी करती हूँ जो शायद आप लोग जानते ना हो, लेकिन मेरी व्यस्तता पूरी रहती है। अगर आप देखें पिछले 7-8 सालों में, जब मैं शायद पर्दे पे नहीं दिखी, लेकिन मैं चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी की चेयरपर्सन थी, तो उसमें 3 साल लग गए। फिर मैंने एक नाटक लिखा था बिटवीन द लाइंस के नाम से, जिसमें मैंने एक्ट भी किया, मैंने लिखा भी, उसको डायरेक्ट भी किया, तो उसमें थोड़ा वक्त निकल गया। फिर मेरा एक 8 साल का बच्चा है, तो पिछले 7-8 सालों
में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी,
बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बहुत, मतलब एक अलग ग्रोथ होती है जिंदगी की।
बिल्कुल।
तो उसमें काफी वक्त गया। फिर मंटो पे ही मैंने 2012 से काम करना शुरू किया, रिसर्च और फिर उसको लिखना, उसके लिए फंड इकट्ठे करना, पूरी फिल्म बनाना। तो मैं गायब जरूर रही, लेकिन ऐसी कई चीजें करती रही। बीच में येल यूनिवर्सिटी में एक फेलोशिप भी किया मैंने 4 महीने का, अपने बेटे को साथ ले गई थी
जी।
और एक लीडरशिप पे एक फेलोशिप था जो 4 महीने वो बिताए वहां पर। तो आई बीन वेरी वेरी बिजी, तो मुझे अपने आप से इतनी थोड़ी कम शिकायत है, शायद आपको ज्यादा हो।
जी बिल्कुल, क्योंकि शिकायत अपनों से ही होती है और जो
बिल्कुल,
आपके
बिल्कुल।
अपने हैं उनको आपने जो ये सफाई दी है ना, वो उनको बहुत शायद पसंद आने वाली है, क्योंकि नंदिता ने पूरे 8 साल गिनाए हैं यहाँ पर।
हाँ बिल्कुल, आपने हक से पूछा तो भी मेरी जिम्मेदारी भी होती है ना बताने की।
जी बिल्कुल। तो नंदिता, अब हम श्रोताओं को ज्यादा इंतजार नहीं कराते हैं और उनको बता देते हैं कि नंदिता जो ऑस्ट्रेलिया में अभी हैं, वो उनकी नई फिल्म मंटो है, आने वाली जो फिल्म है वो कांस में प्रदर्शित कर चुकी हैं, अब यहाँ प्रदर्शित वो कर रही हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि क्या है फिल्म मंटो, किस बारे में है ये।
जी, तो ये मंटो, सादत हसन मंटो नाम के एक बहुत अच्छे राइटर थे जो 1940s और अर्ली 50s में थे। उन्होंने बहुत जल्दी, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई 42 इयर्स में ही, बट उन 42 साल में उन्होंने तकरीबन 300 कहानियां लिखी, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, 100 रेडियो प्लेस किए। तब उस जमाने में अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं होते थे प्लेस, इसलिए उनकी आवाज तक सुनने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कई रेडियो प्लेस किए, एसेज लिखे उन्होंने, जो वो फिल्म इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट भी लिखते थे, इसलिए फिल्मी शख्सियत जो जमाने के थे, जैसे नरगिस थी, अशोक कुमार थे, सितारा देवी, इस तरह के कई लोगों पे उन्होंने प्रोफाइल, जिनको वो स्केचेस कहते थे, वो भी लिखे। कई लोग जो जानते हैं मंटो को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर ऐसे भी कई हैं जो बिल्कुल भी नहीं जानते, तो मुझे लगा ये इन पे एक फिल्म बनाई जाए।
अच्छा नंदिता, हम यहाँ पे ये पूछेंगे कि जो मंटो हैं, उनको जो भी थोड़ा बहुत जिन्होंने भी पढ़ा है या फिर जो उनके बारे में विश्लेषण देते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि मंटो जो है बहुत कंट्रोवर्शियल जो लेखक हैं वो रहे हैं, या फिर कुछ लोग मानते हैं कि जो उनके कटाक्ष होते थे उनकी कहानियों के जरिए समाज पर, जो उनका संदेश होता था वो अपने आप में अलहदा होता था, वो अलग होता था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि नंदिता जो हैं, जो इतनी सीरियस अभिनेत्री हैं, इतनी सीरियस लेखक हैं, उन्होंने क्या देखा मंटो की इन कहानियों में, जो कि उनको सूझी कि मंटो को जनता तक ले जाना चाहिए।
देखिए मंटो एक तो सच, जिसे सत्याग्रह जैसे गांधी जी ने किया था, सत्य का आग्रह
जी,
वो भी अपनी तरह के एक सत्याग्रह वाले इंसान थे, जो जैसी चीज है समाज में उसको वैसा ही खोल के निकालते थे और हम तक पहुंचाते थे, लिखते थे उसके बारे में। वो खुद कहते थे कि अगर आप मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि ये जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है।
क्या बात।
यानी वो एक तरह से अपनी कहानियों को एक आईना समझते थे। उन्होंने खुद ही कहा है कि मेरी कहानियां समाज का एक आईना है, किसी बुरी सूरत वाले को अगर आईने से ही शिकायत हो जाए तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तो उनकी कहानियां समाज की सच्चाई को बाहर लाती थी, और खास तौर पे उन्होंने औरतों के बारे में बहुत लिखा है, और सेक्स वर्कर्स के बारे में भी, जिन्हें हमारे समाज में बिल्कुल साइड में धकेल दिया गया है, उनको कई तरह के नाम दिए गए हैं, उनको प्रोस्टिट्यूट कहकर एकदम समाज से बाहर कर दिया गया है, तो ऐसी औरतों के बारे में भी उन्होंने लिखा, नॉट एज ए विक्टिम पर एज ह्यूमन बीइंग्स, एज यू नो, उनकी भी एक सोच है, उनका क्या कहना है।
तो आपने क्या दिखाया है फिल्म में, मंटो क्या सोचते थे वो दिखाया है, या फिर मंटो की कहानियां क्या कहती थी वो दिखाया है?
मैंने इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के पहले और बाद की का पीरियड लिया है, यानी 1946 से लेकर 1950 तक का।
ओके।
और उनकी कहानी को अगर बताना हो तो उनकी जो लिखी हुई कहानी है उसके बगैर नहीं बताई जा सकती है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कोई ग्लिम्सेस दे सकूं उनकी कहानियों के भी, ऐसी तो 5 कहानियों की एक झलकी आपको मिलेगी।
चलिए, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आपने सामने रखने की कोशिश की है अपनी बातों को, और मंटो तो की बातें जो लोगों को वैसे ही पसंद है, देखना होगा कि आपकी फिल्म में वो कितनी पसंद आती है। लेकिन नवाज को आपने फिल्म में लिया है, नवाज एक ऐसे अभिनेता हैं जिनको देखकर हर कोई सोचता है कि मैं भी हीरो हो सकता हूँ, मतलब वो आम आदमी को आम आदमी से बहुत जल्दी रिलेट करवाते हैं। किस तरह की जो अदाकारी है वो देख रही हैं आप नवाज की इसमें?
वो नवाज एक बहुत ही उनका बहुत वाइड रेंज है
जी।
मतलब अलग अलग कैरेक्टर में बिल्कुल ढल जाते हैं, लेकिन मंटो जैसा रोल शायद उन्होंने भी पहले कभी नहीं किया। कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि इस तरह का इंटेलेक्चुअल राइटर नवाज क्या कर पाएंगे, वो दूसरी तरह के वंडरवर्ल्ड या यू नो सड़क के जैसे जो लोग होते उस तरह से, पर उनका टैलेंट इतना है, उनकी आंखों में एक जिंदगी जी हुई एक फीलिंग है, जिसकी वजह से मुझे पूरा यकीन था कि वो मंटो कर लेंगे। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी लाइनें थी, काफी मुश्किल लाइनें भी थी क्योंकि मंटो की जबान में था, जबकि मंटो वैसे काफी एक्सेसिबल है, यानी वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही सिर्फ इंटेलेक्चुअल टाइप है, वो बहुत ही रिलेट कर सकते हैं आप, ऐसे इंसान थे। तो यही चीज मैंने फिल्म में भी कोशिश की है कि ये कोई बहुत हाईफलूटिंग आर्ट सिनेमा उस तरह का कोई बोझा नहीं है, ये बिल्कुल आप रिलेट कर सकते हैं ऐसी फिल्म
जी। मैं समझ रहा हूँ कि आप 8 फिल्मों की ओर भी इशारा कर रही हैं, लेकिन नंदिता जो मेरी समझ है और जितना हमने देखा है पिछले कुछ सालों में, हम देख रहे हैं कि कुछ अच्छे सब्जेक्ट की डिमांड भी अब लोग कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या देख रही हैं कि जो जो 8 फिल्में जिन्हें हमें कहा जाता था वो जो है वो मेन स्ट्रीम की ओर बढ़ रही हैं, या फिर लोग 8 फिल्मों की ओर जा रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम है वो 8 फिल्मों की ओर जा रहा है?
देखिए, मेन स्ट्रीम तो हमेशा रहेगा, क्योंकि उसका मेन स्ट्रीम बाय डेफिनेशन यही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप खुश करने के लिए कुछ एक बीच का ले लेते हैं, कुछ जो ऐसा थोड़ा सा इमोशनली मैनिपुलेटिव भी होता है कई बार सिनेमा की, भाई अब आपको डरना है, अब आपको खुश होना है, अब आपको रोना है, उस तरफ लेके जाते हैं, उसी तरह का म्यूजिक होता है, उसी तरह के डायलॉग होते हैं, उसी तरह की शॉर्ट टेकिंग होती है। धीरे धीरे लोग कह रहे हैं कि हमें जिंदगी की सच्चाई भी देखने का मन है।
तो नंदिता, आखिर में हमारा सवाल ये है कि ये फिल्म जो है कांस में इसका प्रीमियर हो चुका है, हम अपने जो श्रोता हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के, उनके लिए जानना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में आपका क्या प्रोग्राम है?
जी, इतनी दूर हम इसीलिए आए हैं ताकि यहाँ के लोगों को भी हम दिखा सकें ये फिल्म। मैं तो चाहती हूँ दुनिया के हर कोने में जाए, और इसीलिए आए। कल 3:40 पे स्टेट थिएटर में दिखाया जाएगा, बड़ा 2000 लोगों का थिएटर है। आप लोग सब आएंगे तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप लोग दूर रहते हैं लेकिन फिर भी अपने हैं, और जिस तरह से आप लोग समझेंगे यहाँ के जो लोग हैं पूरी तरह से उतना नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट वगैरह सबसे वाकिफ हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो फिल्म है ये सफल होगी, लोगों को पसंद आएगी, और खासतौर पर जो मंटो को लोगों के सामने लाने की कोशिश है आपकी वो सफल रहेगी।
थैंक यू वेरी मच।
sbs.com.au/hindi पर जाए और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाए।